माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtotar Sat. His Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Shri Jagannath Rathyatra Mahotsav Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruh Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के पहले अब 3 दिन भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। भगवान जगन्नाथ नीलाचल में श्री क्षेत्र पुरी में, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, निवास करते हैं। उनका रूप बड़ा अद्भुत है। यद्यपि वो स्वयं श्री कृष्ण हैं और बलभद्र स्वयं उनके बड़े भाई बलराम हैं और सुभद्रा देवी उनकी बहन है, परंतु उनका रूप थोड़ा अद्भुत है, क्योंकि ये तीनों ही वृंदावन के विरह के भाव में हैं। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की जो सेवा की जाती है, उसकी सेवा की पद्धतियां भी अद्भुत हैं। अन्य मंदिरों में अनेक ऐसे प्रथाएं नहीं दिखी जाती, जैसे कि दयितपति जो ब्राह्मण कुल के नहीं हैं, वो विशेष करके जगन्नाथ जी की सेवा अनवसर के समय करते हैं। स्नान यात्रा और रथ यात्रा के बीच में जो 2 हफ्तों का समय होता है, उसे अनवसर कहते हैं, जब भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं, और ऐसे बताया जाता है कि वो उस समय बीमार हो जाते हैं। और ये दयितपति जो हैं, जो शबर जाति के हैं, जो वन में रह के पशुओं की हत्या आदि किया करते थे उस समय, उनके ये सब वंशज हैं। और ये पहले विश्वावसु के वंशज हैं, जो बहुत बड़े भक्त थे नीलमाधव के। नीलमाधव भगवान जगन्नाथ के वो रूप हैं जो कि ब्रह्मा जी के पहले 50 वर्षों में प्रकट हुए थे। फिर ब्रह्मा जी के दूसरे आधे जीवन के दूसरे भाग में, जिसको द्विपरार्ध, दूसरे परार्ध में, वही नीलमाधव अभी जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा भेजे हुए विद्यापति ने विश्वावसु को देखा, उनसे मिले, नीलमाधव का दर्शन भी किया। तो फिर जब भगवान जगन्नाथ के रूप में आए, तो उन्होंने आदेश दिया था कि मेरे ये दयितपति सेवक मेरी सेवा अनवसर के समय निश्चित करेंगे। तो ये एक प्रथा बन गई है अनेक वर्षों से। तो ऐसे अनेक चीजें हैं जगन्नाथ मंदिर में जो कि अन्य मंदिरों में नहीं पाए जाते हैं, और आराधना आदि करने की उपासनाएं, वहां के उत्सव आदि कभी कभी अन्य मंदिरों में नहीं देखे जाते। परंतु जो भगवान जगन्नाथ के भाव को जानते हैं, वहां के इतिहास को जानते हैं, वो इन चीजों को जगन्नाथ की इच्छा समझ के स्वीकार करते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि श्री संप्रदाय के आचार्य श्रील रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए थे। उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम के बारे में बहुत सुना था और वो मानते थे कि जगन्नाथ भगवान स्वयं महाविष्णु हैं। जब वो आए जगन्नाथपुरी तो उनको देख के आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ देव की पूजा की विधियां ये कुछ अलग सी हैं। थोड़े बहुत वैदिक पद्धति के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन थोड़े पद्धतियां थोड़े विधियां ये तो कुछ अलग ही हैं। अलग अलग पद्धतियों का मिश्रण दिखाई पड़ रहा है यहां पर। तो उन्होंने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, केवल वैदिक पद्धति के अनुसार ये सब होना चाहिए। तो उन्होंने राजा से बात की। उस समय चोद गंगादेव नाम के राजा राज्य किया करते थे जगन्नाथपुरी में। ये वंशावली गंगा वंश की है। उनको गंगा के जैसे गुप्त साम्राज्य हुआ, गुप्त मौर्य आदि, ऐसे ये गंगा इनका नाम था। तो चोद गंगादेव उनका नाम था। तो ये रामानुजाचार्य को बहुत मानते थे, क्योंकि रामानुजाचार्य तो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े आचार्य थे। तो चोद गंगादेव राजा रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित थे। तो रामानुजाचार्य ने राजा से कहा कि यहाँ जगन्नाथ जी की जो पूजा अर्चना चल रही है, विधियां हैं, ये ठीक ठाक नहीं है। इनको मैं ठीक से वैदिक पद्धति के अनुसार करवाना चाहता हूँ। तो आप ऐसे आदेश देंगे पुजारियों को तो वो कर लेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने ब्राह्मणों से बात की, पुजारियों से बात की, लेकिन पुजारियों को खुशी नहीं हुई इस बात को सुन के कि ऐसे कैसे प्राचीन काल से चल रही है पद्धति, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने स्थापित की है, तो हम कैसे स्थापित कर सकते हैं इसको, नए चीज को कैसे बदल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं पुराने चीजों को बदल के। लेकिन फिर भी राजा ने जोर किया कि नहीं, ऐसे ही करेंगे। और एक दिन नियुक्त किया गया कि इस दिन से प्रातः काल में नए पद्धति के अनुसार भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना शुरू होगी। और रामानुजाचार्य भी उस समय थे, तो ऐसे निर्धारित किया गया कि रामानुजाचार्य भी जगन्नाथ मंदिर में इस समय ठीक आएंगे और वो फिर नए पद्धति की शुरुआत करेंगे। लेकिन उस समय राजा आए, सारे पुजारीगण भी वहां आए, लेकिन रामानुजाचार्य दिखाई नहीं पड़े वहां पे। काफी समय बीत गया और फिर समय जब चले जा रहा था, भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाने के लिए, उठाने के लिए आदि सब देर हो रहा था। तो राजा ने फिर पुजारियों को आदेश दिया कि पुराने पद्धति के अनुसार कर लो, फिर बाद में देखेंगे। अब जाके सब रामानुजाचार्य को खोज लो कि वो कहाँ हैं। फिर कोई भी रामानुजाचार्य को ढूंढ नहीं पाए, कहीं भी जगन्नाथपुरी में वो दिखाई नहीं दिए। फिर उनको पता चला, राजा को खबर मिली कि वैसे रामानुजाचार्य के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए थे और उन्होंने कहा रामानुजाचार्य से कि ये सब पद्धतियां, ये सब विधियां मैंने बनाई हैं, इसमें आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करना, ये दैत्यपति लोग मेरे भक्त हैं और यही मेरी सेवा करेंगे, ऐसे आप इसको बदलने का प्रयास नहीं करना। फिर उनको गरुड़ जी के ऊपर सवार करा के उनको जगन्नाथपुरी से दूर आंध्र प्रदेश में ले गए, जहां कुर्मक्षेत्र है। कुर्मक्षेत्र भी एक बहुत पवित्र स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण के कुर्म अवतार या कुर्म रूप का मंदिर है वहां। ऐसे अनेक मंदिर नहीं पाए जाते जहां कुर्म देव के मंदिर होते हैं। तो रामानुजाचार्य जब प्रातः काल में उठे इस सपने को देखने के बाद, तो उन्होंने देखा कि अरे मैं कहां आ गया हूं, पहले उन्होंने सोचा कि ये कोई शिवजी का स्थान है कि क्या है, फिर बाद में उनको पता चला कि नहीं, उन्होंने विग्रह को देखा, फिर पता चला कि ये तो कूर्मदेव है। और उधर राजा को भी पता चला जब संदेश मिला कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इसके बाद से अभी जगन्नाथ मंदिर की अर्चना विधि को परिवर्तित करने का किसी ने प्रयास नहीं किया है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर भगवान का बड़ा विशेष है। इसमें भगवान ने ऐसे अपने भक्तों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की है। शायद ये एक ही मंदिर होगा, प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का, जिसमें अर्चा विधि आदि थोड़े समय के लिए भले क्यों न हो, परंतु जो ब्राह्मण कुल के नहीं है वो आके करते हैं, और वो भी केवल एक बार नहीं, हर साल प्रतिवर्ष होता है 15 दिन के लिए अनवसर के समय। उस समय भगवान को विशेष भोग चढ़ाया जाता है, जो 56 भोग होता है वो नहीं, क्योंकि वो ऐसे अस्वस्थ होते हैं और केवल उनको जड़ी बूटी और फल के रस आदि अर्पण किए जाते हैं और तरह तरह के औषधियां भी दिए जाते हैं ताकि अपने रोग से वो ठीक हो जाएं जल्दी से। वैसे कई आचार्यों ने बतलाया है कि जगन्नाथ भगवान कई अनवसर के समय जब वो बीमार हो जाते हैं, वो ऐसा समय है जबकि वो वृंदावन से बहुत अधिक विरह की भावना की अनुभूति करते हैं, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे सब लक्षण, बुखार आदि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे वृंदावन के व्रजवासी श्री कृष्ण के विरह में ऐसे ही लक्षण प्रकट किया करते थे, कभी बुखार आता तो कभी क्या, तरह तरह के लक्षण उनके शरीर में प्रकट होने लगते थे। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ भगवान को भी विरह तो आता है 365 दिन, और इसीलिए तो ये रूप उन्होंने धारण किया है, विरह का ही रूप है ये। परंतु रथ यात्रा के समय, जब रथ यात्रा बहुत करीब आ जाती है, तो उस समय ये विरह की भावना इतनी तीव्र हो जाती है भगवान जगन्नाथ में कि उनको बुखार आदि आ जाता है, ऐसे कई आचार्यों ने बतलाया है। और जगन्नाथ रथ यात्रा, जैसे आप जानते हैं, ये उत्सव क्या है, किस लिए मनाया जाता है? इस समय जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ मंदिर को छोड़ के अपने रथ के ऊपर सवार होके गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर ये द्वारका या कुरुक्षेत्र के समान है और गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन के समान है। वैसे यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी देवी के साथ में निवास करते हैं, लक्ष्मी देवी उनके लिए भोजन बनाती हैं, ऐसे बताया जाता है। आप में से जो भक्त जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए हैं, यदि आप उनके रसोई घर में जा चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां कैसी अद्भुत अवस्था होती है जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। ऐसे रसोई घर भी शायद ही कहीं होगा किसी भी मंदिर में, किस तरह से इतने बड़ी मात्रा में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, और उन्हीं नियमों का पालन आज भी होता है जो पहले हुआ करता था। जैसे आप वहां जगन्नाथ मंदिर में टमाटो आदि सब सब्जियां नहीं देखेंगे, या आधुनिक सब्जियां हैं या विदेश से आए हुए सब्जियां हैं वो नहीं बनती हैं, केवल प्राचीन पद्धति के अनुसार जो पुराने जमाने में जो सब्जियां आदि अर्पण किए जाते थे वही आज अर्पण किए जाते हैं, उनके अलावा और कोई भी चीज अर्पण नहीं की जाती है। और जिस प्रकार से वहां रसोई होती है, कैसे एक के ऊपर एक मटके रखते हैं और कैसे आपस में बिल्कुल सब कुछ, सारे आइटम जो हैं, सारे पदार्थ ठीक से पक जाते हैं, ऐसे नहीं होता कि कोई कम पक गया, कोई ज्यादा पक गया, कोई जल गया, ऐसे कभी नहीं होता है। और ऐसे बताया जाता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी आके ये भोजन बनाती है, भोग बनाती है, फिर जगन्नाथ को अर्पण किया जाता है। तो लक्ष्मी देवी वहां निवास करती हैं। तो लक्ष्मी देवी और भगवान जगन्नाथ, ये तो एक वैकुंठ का भाव हो गया। परंतु वैकुंठ या द्वारका में रहते हुए भी भगवान जगन्नाथ वृंदावन को नहीं भूल पाते हैं, और रथ यात्रा के समय कम से कम उनको 9 दिन वृंदावन में अर्थात गुंडीचा मंदिर में रहने का अवसर मिलता है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत दिनों तक दूर रहा है और घर वापस जाने के लिए एक अवसर मिला है, जैसे समझ लीजिए वो नौकरी कर रहा है, एक साल भर बाहर रहा और 9 दिन छुट्टी मिलती है उसको घर आने के लिए, तो अनेक दिन पहले से ही उसकी अंदर वो कामना होने लगती है कि अब कब मैं घर जाऊंगा, कब, वो एक भावना मन में रहती है, तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे घर लौटने का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे उसकी भावना भी तीव्र होती रहती है, यद्यपि वो साल भर अपने घर के बारे में सोचता है, लेकिन घर जाने का समय जब करीब आ जाता है तो और तीव्रता से सोचता है। तो यद्यपि वैकुंठ भी भगवान का घर है, परंतु वृंदावन विशेष उनका घर है, वृंदावन का विशेष वो स्मरण करते हैं। तो फिर वो 9 दिन गुंडीचा मंदिर में अपने वृंदावन भाव में रहते हैं और फिर उल्टा रथ होता है 9 दिन के बाद, और उल्टा रथ में रथ यात्रा फिर से होती है लेकिन उल्टे दिशा में। जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ के ऊपर बैठ के गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर आते हैं, और इस दौरान अनेक उत्सव आदि भी बीच में होते हैं, जैसे हेरा पंचमी आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जगन्नाथ देव वहां पे रहते हैं और दैतों से भी सेवा स्वीकार करते हैं, और इस तरह से रथ पे निकल के मूल विग्रह निकलते हैं। अन्य जितने मंदिरों में विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर हैं, मूल विग्रह निकलते नहीं हैं, उनके उत्सव मूर्ति मात्र निकलते हैं, और उत्सव मूर्तियों को शोभा यात्रा में निकाला जाता है, पालकी में बिठा के ले जाया जाता है। ये तो प्रथा प्रत्येक मंदिर में है, परंतु मूल विग्रह निकल के 9 दिन तक बाहर रहते हैं, रथ में जाते हैं, ऐसे प्राय कहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता। तो इसलिए ऐसे अनेक विधियां हैं, और यहाँ की सारी विधियां स्वयं जगन्नाथ भगवान ने बनाई हैं। मूल विग्रह का बाहर निकलना, फिर दैतपति जो शबर जाति के हैं उनसे मूल रूप से सेवा स्वीकार करना इत्यादि। तो हमें भी जान लेना चाहिए कि ये तो भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच में विशेष लीला है, संबंध है। वहां जैसे जगन्नाथ भगवान चाहते हैं वैसे ही होगा। और एक भक्त थे जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो ब्राह्मण थे, जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे। ये जगन्नाथपुरी की लोक कथा है, लेकिन ये कथा दूसरे स्थानों में भी सुनी जाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये कथा बताई थी, लेकिन जगन्नाथपुरी के संबंध में नहीं। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यादवाचार्य, और दूसरे जगह में भी ऐसे पाए जाते, बेलगाम के पास भी एक स्थान है, तो कई लोग ये कहते हैं कि वो ब्राह्मण वहां निवास किया करते। तो ऐसे अनेक लोक कथाएं होती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भी ये लोक कथा है। ये ब्राह्मण जगन्नाथ भगवान के बहुत श्रद्धालु भक्त थे और भगवत गीता के प्रति विशेष रूप से उनकी श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन बैठ के भगवत गीता का पाठ किया करते थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जब वो गीता का पाठ नहीं करते थे, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी क्यों न हो, रोज बैठ के भगवत गीता का पाठ निश्चित करते थे। और इसलिए सारे जगन्नाथपुरी में उनका नाम लग गया गीता पंडा। तो आज भी किसी या पंडे को पूछिए वहां, तो गीता पंडा की कथा तो अवश्य वो जानेंगे, गीता पंडा, क्योंकि वहां के पुजारियों को ब्राह्मणों को पंडा कहते हैं, तो इनका नाम पड़ गया गीता पंडा। तो गीता पंडा जैसे ब्राह्मण हुआ करते थे, वो गरीब थे, ज्यादा धन उनके पास नहीं था, हर अवस्था में वो बहुत संतुष्ट रहते थे और रोज दिन में एक बार भिक्षा मांगने के लिए जाते थे बाहर। भिक्षा से जो भी मिल जाता था वो अपने परिवार के सदस्यों में बांट के वो भोजन लेके बड़े संतुष्टि से रहा करते थे। उनका कोई व्यापार नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों को ऐसे व्यापार करना, नौकरी करना वर्जित था। वो केवल जगन्नाथ जी के ऊपर निर्भर होके अपने साधन भजन किया करते थे, विशेष रूप से भगवद गीता का पाठ। एक समय ऐसे हुआ कि खूब वर्षा हुई जगन्नाथपुरी में। इतनी वर्षा हुई कि बाहर जाने के लिए कोई मौका नहीं मिला गीता पंडा को, और जब बाहर नहीं गए तो भिक्षा नहीं मिली, भिक्षा नहीं मिली तो परिवार के सदस्यों को कोई भोजन नहीं मिला। अब ऐसे थोड़ा समय बीत गया, थोड़ा बहुत इकट्ठा जो किया था, जो पिछले दिन की जो भिक्षा आदि के लिए जो बच गया था वो खाते रहे, लेकिन वो जल्दी समाप्त हो गया और घर में कुछ भोजन रहा नहीं। तो गीता पंडा की पत्नी जो ब्राह्मणी थी वो चिंतित हो गई कि अब हमारे 3 बच्चे हैं, अब भोजन नहीं है घर में तो कैसे चलेगा काम। तो गीता पंडा ने कहा, विश्वास करो, जगन्नाथ भगवान हमारी देखभाल करेंगे। और फिर उन्होंने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वां श्लोक बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसमें भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है, भक्ति भाव से, एकाग्र चित्त से, जो प्रतिदिन श्रद्धा से मेरी सेवा करता है, उसकी जो भी कमियां हैं मैं पूर्ण करूंगा और उसके पास जो भी है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। योग क्षेम वहाम्यहम्। योग मतलब हमारी आवश्यकताएं, क्षेम मतलब उनका संरक्षण। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में बताते हैं कि स्वयं मैं इन दोनों कार्यों को करूंगा। मेरे भक्तों की जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूर्ण करूंगा और भक्तों के पास जो है, जो मेरे द्वारा ही पहले से प्रदत्त है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो इस एक बात के ऊपर श्रद्धा रखना, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है हमेशा, क्योंकि जब कोई समस्या आ जाती है तब मन डावाडोल होने लगता है कि वास्तव में क्या भगवान देंगे नहीं देंगे, कब तक हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेंगे भगवान। तो गीता पंडा की जो श्रद्धा थी वो अटूट थी, लेकिन पत्नी बेचैन होती जा रही थी। समय बीतते जा रहा था, घर में भूखे थे और कोई प्रसाद या भोजन था नहीं घर में, अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मणी ने अपने पति को फिर डांटना शुरू कर दिया, कुछ तो करना चाहिए, घर में भोजन नहीं है, हमारे बच्चे भी भूखे पड़े हैं, कुछ तो करो। तो गीता पंडा ने फिर से कहा कि चिंता नहीं करो, जगन्नाथ भगवान आएंगे, वो सुरक्षा करेंगे। क्या तुम्हें भगवद गीता के वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी में श्रद्धा नहीं है। तो फिर से वो हैरान होकर फिर सो गई रात के समय। अगले दिन फिर अचानक 2 सुंदर बच्चे दरवाजे पे आए। उस समय गीता पंडा घर के किसी दूसरे भाग में थे। ये 2 बच्चे आए, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो ब्राह्मणी को आश्चर्य हुआ देख के कि 2 बहुत ही सुंदर बच्चे सामने आए हैं। एक का रंग सांवला है, दूसरे का रंग बहुत गोरा है। और उनसे पूछा कि आप कौन हो। बोले, हम आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए, भोग देने के लिए आए हैं। तो उनके अच्छा, फिर तो उन्होंने स्वीकार कर दिया। और इतना लाए थे वो सामग्री, सामान इतना लाए थे कि उनका जो भंडार घर है, रसोई घर भंडार है, पूरा भर गया। फिर ब्राह्मणी ने उन बच्चों से कहा कि आके बैठो तो सही, मैं अभी प्रसाद बनाती हूँ, प्रसाद तुम खा के जाना। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा जो जीभ है 3 जगह कटा हुआ है, इसलिए मैं खा नहीं सकता। तो मन का ठीक है, फिर वो चले गए। और फिर ब्राह्मणी ने जाके अपने पति से बड़े खुशी से कहा कि देखो हमारे पास अभी सारा भंडार, भोजन का भंडार भर गया है, रसोई घर भर गया है, सारी चीजें जितने भी आवश्यक है वो हमें अनेक महीनों तक बल्कि सालों तक ये सब चल जाएगा। तो गीता पंडा ने आके देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये सब कहाँ से आ गया, कौन थे वो, कैसा। तो वर्णन जब किया ब्राह्मणी ने तो गीता पंडा को पता चला कि ये तो स्वयं कृष्ण और बलराम थे। और फिर अपने पत्नी के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे कि तुमने तो स्वयं श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन किया, देखो स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र हमारे घर में आए। और तुम उस समय संशय कर रही थी, उस समय ब्राह्मणी को याद आया कि मुझे बहुत क्रोध आया था जब मेरे पति ने ये अनन्यास चिंतयन्तु माम श्लोक बार बार कहना शुरू किया था, हम लोग यहाँ भूखे पड़े हैं और ये केवल अनन्यास चिंतयन्तु माम की बात करते हैं। तो पत्नी ने जाके उस समय कलम से उस श्लोक के ऊपर तीन रेखाएं ऐसे करी थी, काट दिया था तीन बार गुस्से में कि क्या तुम्हारे जगन्नाथ भगवान करते, हम यहाँ बच्चों के साथ तीन दिन भूखे हैं, इतने दिन भूखे हैं और तुम केवल गीता के श्लोक बोले जा रहे हो। तो फिर पत्नी को याद आया कि हाँ मैंने वो श्लोक कैसे तीन बार काटे थे, और इसलिए उस बच्चे ने कहा, वो सांवले रंग के बच्चे ने कहा कि मेरे जीभ पे तीन बार वो तीन घाव हैं, इसलिए मैं खा नहीं सकता। तब गीता पंडा को भी पता चला कि क्या हुआ है। तो दोनों फिर अपने प्रेमावेश में आके भाव विभोर होकर वो गिर पड़े बेहोश होके, और फिर दौड़ते गए जगन्नाथ मंदिर में उनको धन्यवाद देने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए कि हमने आपके प्रति बहुत अपराध कर लिया। और वहां जाके देखा कि जगन्नाथ भगवान के होठों पे तीन दाग लगे हुए थे। तो ऐसे ये जगन्नाथ पुरी की एक कथा है, बहुत पुरानी कथा है गीता पंडा की। तो इन कथाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें भी कैसे भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान हो सकता है हमारी परीक्षा समय समय पर लेते रहे, परंतु हमारी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए, मन डामाडोल नहीं होना चाहिए। और चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमारा साधन भजन हमें नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। तो ये गीता पंडा की कथा है। और एक जो बहुत अद्भुत और सुंदर कथा है वो है राजा पुरुषोत्तम देव से संबंधित। गंगा वंश में ही, अर्थात चौदह गंगा देव राजा के ही वंशजों में से एक थे राजा पुरुषोत्तम देव। ये पुरुषोत्तम देव वास्तव में राजा प्रताप रुद्र के पिता थे। राजा प्रताप रुद्र और श्री चैतन्य महाप्रभु समकालीन थे। राजा प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत शुद्ध भक्त थे और उनकी लीलाएं भी अपार हैं। उन्होंने कैसे अपने प्राण को त्यागना चाहा जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन देने से इनकार किया था। तो उनके पिता भी वैसे ही बहुत महान भक्त थे भगवान जगन्नाथ के। बल्कि ऐसे जगन्नाथ पुरी के राजा ऐसे हुआ करते थे, सब एक से एक बढ़ के भक्त। आज भी जो राजा हैं जगन्नाथ पुरी के, वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं, हमारे संस्था के प्रति भी बहुत अच्छी भावना रखते हैं। हालांकि अभी राजा का पद वगैरह तो नहीं है, अभी प्रजातंत्र चल रहा है, उनका राज्य नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि वो, हम जब वृंदावन में थे तो वहाँ मंदिर में आए थे दर्शन आदि करने के लिए, और उनके साथ बैठ के एक दो घंटे बातचीत करने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छे भक्त हैं, हृदय से उनकी इतनी अटूट श्रद्धा है जगन्नाथ के प्रति। और हमारे संस्था में भी इतने सारे विदेशों में भी भक्त हैं, वो ऐसे जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, ये सब जान के उनको बहुत अच्छा लगा है। इसलिए हमारे इस्कॉन संस्था के भक्तों की बहुत सहायता करते हैं, सबके साथ प्रेम का संबंध रखते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को वो प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो वृंदावन मंदिर में आए थे। तो जो हमारे पास उपलब्ध थे उस समय, यह वहाँ से उनको ग्रंथ भेंट कर दिए। तो बातों बातों में वो बता रहे थे कि अभी सरकार ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा धन छीन लिया, हमारा राज्य छीन लिया, लेकिन सरकार हमारी एक चीज नहीं छीन पाई, और वो है कि रथ यात्रा के पहले हम जगन्नाथ जी के सामने जाके झाड़ू लगाते हैं रास्ते का, वो सेवा हमसे छीन नहीं पाई सरकार। तो उनको संकोच इसमें नहीं था कि हमारा धन चला गया, राजपद चला गया, इसमें कोई संकोच नहीं था, लेकिन उनको आनंद इस बात का था कि मेरे जगन्नाथ जी के प्रति जो सेवा है वो सरकार नहीं छीन पाई। देखिए ऐसी भावना, साधारण राजा होते तो कहते ये सेवा छीन लो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा धन चाहिए, मेरा राजपद चाहिए, ये तो झाड़ू मारना है भगवान के साथ, वो तो कोई भी मारे मुझे क्या है उसमें, ऐसे भी सोच सकते थे वो, लेकिन ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी सेवा है भगवान जगन्नाथ के लिए वो किसी ने नहीं छीना है आज तक। इसलिए आज भी जो पुरी के पंडा आदि हैं वो राजा का सम्मान करते हैं क्योंकि वो महान भक्त है। तो खैर, पुरुषोत्तम देव राजा बहुत महान भक्त थे जगन्नाथ जी के, और उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया था, राज्य की सीमाओं को बल्कि आंध्र प्रदेश राजमंड्री आदि स्थान तक बढ़ा दिया था, विजयवाड़ा राजमंड्री आदि। तो ऐसे अपने राज्य को बढ़ाते बढ़ाते एक बार वो कांचीपुरम, कांची स्थान में पहुंच गए, बहुत प्राचीन स्थान है ये, और वहां पहुंच के उन्होंने अपने तंबू आदि स्थापित किए, और वहां फिर वहां की जो राजकन्या थी, राजकुमारी पद्मावती, उनसे विवाह होने का तय हुआ। तो दोनों, राजकुमारी पद्मावती और राजा पुरुषोत्तम देव, दोनों बड़े प्रसन्न हुए। वहां के कांची के राजा भी प्रसन्न हुए कि ऐसा योग्य वर हमारे पुत्री के लिए मिला है। तो फिर थोड़ी देर बाद राजा पुरुषोत्तम देव अपने शहर में, पुरी में वापस चले गए। ये तय हुआ कि थोड़े समय बाद विवाह होगा। तो कांची के राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि थोड़े भेंट आदि लेके जाओ, उपहार लेके जाओ मेरे होने वाले दामाद के लिए, वहां पूरा आदर सत्कार से, सम्मान से उनको ये सब उपहार आदि देना, तो और देख भी लेना कि वहां कैसे राज्य है पुरुषोत्तम देव का। तो मंत्री वहां पे गए, उन्होंने देखा कि यहाँ इतने धूमधाम से जगन्नाथ देव की सेवा होती है, और राजा भी जगन्नाथ देव के इतने बड़े भक्त हैं, इतने श्रद्धालु हैं। कांची के राजा वैसे गणेश जी के उपासक थे। तो उनके मंत्री आए, उन्होंने देखा, ठीक है अच्छी बात है। राजा पुरुषोत्तम देव ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर रुक के जाइए, क्योंकि यहाँ पे अभी रथ यात्रा का महोत्सव थोड़े ही दिनों में होने वाला है। तो मान गए, वो रुके। फिर रथ यात्रा के समय उन्होंने सारे अनुष्ठान को, सारे उत्सव को देखा। पांडु विजय उत्सव, जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को मंदिर के बाहर से लाया जाता है, रथ के ऊपर बिठाया जाता है, ये सारे उत्सव उन्होंने देखे। और फिर हमेशा की तरह है, राजा पुरुषोत्तम देव रथ के सामने आए और वो झाड़ू लगा रहे थे बड़े श्रद्धा से। ये मंत्री जो थे वो भक्त नहीं थे, और उनको ये जगन्नाथपुरी की प्रथाओं का भी ज्ञान नहीं था, यहां भक्ति की संस्कृति का भी कोई ज्ञान नहीं था, और उन्हें पता नहीं था कि भगवान जगन्नाथ के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है राजा का, किसी का भी। तो उन्होंने केवल ये देखा कि ये तो झाड़ू मार रहे हैं रस्ते का, सोचा छी 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 छी, ऐसे राजा काम करे, रस्ते को झाड़ू मारने का काम करे, ये तो चंडाल का काम है। फिर मंत्री वापस चले गए और उन्होंने कांची राजा को रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने खबर दे दी कि ये तो राजा पुरुषोत्तम देव तो चंडाल के कार्य भी करते हैं, राजा है लेकिन झाड़ू भी मारते हैं रास्ते का। तो वहां राजा, वो भी भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे, वो तो गणेश जी के उपासक थे। तो उन्होंने सोचा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी पुत्री को मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह कैसे कराऊं, ये तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेरी पुत्री का विवाह ऐसे राजा से नहीं हो सकता है जो कि चंडालों का भी कार्य करते हैं। राजा को एक क्षत्रिय को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो जब खबर पहुंची राजा पुरुषोत्तम देव के कानों तक तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि राजा कांची राजन ने न केवल मेरा अपमान किया, मेरे अपमान किए जाने पर मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु उन्हें जगन्नाथ भगवान के प्रति अपमान किया है। क्योंकि मैं जो झाड़ू लगा रहा था वो किस लिए लगा रहा था, ये तो पुरानी प्रथा है, ये भगवान जगन्नाथ की सेवा है, और ये मंत्री तो भक्त नहीं था, उसे भक्ति के बारे में अध्यात्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, इसने जाके कुछ कह दिया, राजा ने भी वो भी उसने भी मान ली इस बात को, तो ये तो जगन्नाथ के प्रति अपराध किया है, अपमान किया है कांची राजा ने, तो उसको दंड देना होगा। तो फिर राजा पुरुषोत्तम देव ने अपनी सेनाओं को साथ में लिया और वो चले गए कांची की ओर युद्ध करने के लिए, और युद्ध किया। युद्ध के समय फिर कांची राजा को पता चला, वैसे पद्मावती देवी को बहुत दुख हुआ क्योंकि पद्मावती देवी ने अपना हृदय राजा पुरुषोत्तम देव के ऊपर स्थिर कर दिया था। अब जब ये ऐसी खबर पहुंची कि उनके पिताजी ने ऐसे संबंध को स्वीकार नहीं किया तो बड़ा दुख हुआ। तो उस समय जब कांची राजा को पता चला कि राजा पुरुषोत्तम देव सेना लेके युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने शर्त रखा और खबर पहुंचाई राजा पुरुषोत्तम देव को कि यदि आप युद्ध करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, परंतु यदि मैं जीत जाऊंगा तो फिर आपको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की मूर्तियां यहां भेजनी होंगी और मैं उनको गणेश जी के ऐसे अवस्था में रखूंगा कि सब लोग जानेंगे कि गणेश जी श्रेष्ठ है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, यदि आप जीत जाओगे तो मैं गणेश जी को वहां भेजूंगा और आप फिर वहां उनके पीछे रखोगे। तो जब पुरुषोत्तम देव ने यह खबर उनको मिली तो उन्होंने स्वीकार कर दिया, ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये कैसे गणेश जी के पीछे हो सकते हैं? तो युद्ध हुआ। युद्ध में ऐसे हुआ कि एक बार राजा पुरुषोत्तम देव के तंबू आदि में आग लग गई तो उनको वहां से जबरदस्ती वापस जाना पड़ा, उनको बड़ा दुख हुआ। और जगन्नाथ देव के पास वापस आके जगन्नाथपुरी ने कहा कि ये क्या आपने की, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये आपके मान सम्मान की बात है, ये कांची राजा ने ऐसे किया है, आपका अपमान किया है, और आप यदि मुझे हरा देना चाहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर जगन्नाथ देव ने उनसे कहा कोई चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चले जाना और विजय तुम्हारा होगा, जीत तुम्हारी होगी निश्चित ही। तो राजा पुरुषोत्तम देव को हौसला मिला, फिर से अपने सेना को एकत्र करके निकल पड़े। निकलते हुआ ये कि जगन्नाथ और बलराम बलदेव उन्होंने दो सैनिकों का रूप धारण किया, श्री कृष्ण या जगन्नाथ वो एक काले घोड़े पर बैठे और बलराम जी एक सफेद घोड़े के ऊपर बैठे, और दोनों जगन्नाथपुरी से निकल पड़े और कांची की ओर जा रहे थे। जगन्नाथपुरी के किसी निवासी में ने ये देखा नहीं, लेकिन चलते चलते आनंदपुर नाम का एक गांव आया, उसके पास ही दोनों को प्यास लगी, जगन्नाथ और बलभद्र को, और देखा कि एक बूढ़ी महिला वहां से जा रही थी, वो छाछ बेच रही थी। तो उन्होंने कहा कि छाछ हमें दे दो, हमें बहुत प्यास लगी है। तो सारा छाछ का मटका जो है दोनों भाई पी गए, फिर निकल पड़े तो बुढ़िया कहने का, अरे अरे पैसे दो मेरे, मुझे अभी मेरा गुजारा कैसे होगा, पैसे दे दो। तो बोले नहीं, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। तो बुढ़िया रोने लगी कि मेरा जीवन निर्वाह तो ऐसे छाछ बेचकर होता है, अभी आप ऐसे मेरा छाछ पी के जा रहे हो तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा, आज मैं क्या भोजन खिलाऊंगा उनको। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, हमारे पीछे पीछे ही जगन्नाथपुरी के राजा आ रहे हैं। तो वो जो काले घोड़े पे बैठे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने वो अंगूठी दे दी और कहा कि ये अंगूठी दे दो राजा को, और कहा कि आपके दो सैनिक आए थे, उनमें से एक ने मुझे ये अंगूठी दे दी और ये आप रख लो, और जो मेरे पैसे हैं मेरे वो मुझे दे दो, जो छाछ के लिए बेच के कुछ मिलना था वो मुझे दे दो आप। तो बुढ़िया को और कोई चारा नहीं था, ले लिया, बैठ गई, राह देखती रही। और थोड़े समय बाद पीछे से राजा अपनी सेनाओं को लेकर आए थे, उन्होंने राजा को रोका और कहा कि आपके दो सैनिक ऐसे आगे चले गए और उन्होंने मेरे से छाछ पी ली लेकिन पैसे नहीं दिए, उन्होंने अंगूठी दी थी और कहा कि राजा को ये अंगूठी दे दो, फिर राजा तुम्हें पैसे दे देंगे। राजा ने अंगूठी देखी, अरे ये तो जगन्नाथ जी की अंगूठी है। बोला कि कैसे थे वो सैनिक? तो उन्होंने कहा कि एक सांवले रंग के थे, काले घोड़े पे बैठे थे, दूसरे बहुत गोरे थे, वो सफेद रंग के घोड़े पे बैठे थे और वो आगे चले गए युद्ध करने के लिए। तब राजा पुरुषोत्तम देव भाव विभोर हो गए और उस समय इतना आनंद हुआ उनको ये जानकर कि स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र युद्ध करने आगे निकले हैं और उन्होंने ऐसे लीला की है इस भाग्यशाली महिला के साथ। तो उन्होंने तुरंत उस समय न केवल उसे धन दे दिया लेकिन अनेक आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी महारानी बना दी उनको और कहा कि आज जितने भी गांव हैं यहां से जो कर आता है वो तुम्हें मिलेगा, इसलिए तुम्हारे जीवन निर्वाह में तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। और जिस स्थान में हम अब खड़े हैं यहां हम एक गांव बनाएंगे, तुम्हारा नाम मणिका है तो यह आज से इस स्थान का नाम मणिकापट्टन होगा, यहां एक नगर बसेगा। और आज भी ओडिशा में एक मणिकापट्टन नाम का गांव है आंध्र प्रदेश के सीमा में। और फिर आगे चलते गए राजा पुरुषोत्तम देव, अब उनको निश्चित हुआ कि अभी मेरे लिए जीत है, जीत होनी ही है मेरी। और फिर जाके जब वो पहुंचे तो देखा कि राजा पहले से कांची के राजा हार गए, क्योंकि ये दो सैनिक जो आगे आए थे उन्होंने ऐसे युद्ध किया कि सारे कांची राजा के सैनिकों को परास्त कर दिया। और फिर राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने रानी पद्मा या कुमारी राजकुमारी पद्मावती को गिरफ्तार करके वो ले गए वापस, और गणेश जी को मूर्ति के को भी ले गए वापस। और गणेश जी की मूर्ति को वहां जगन्नाथ भगवान के पीछे रख दिया, वहां पीछे आज भी वो मूर्ति है भगवान गणेश जी की, भंड गणेश कहते हैं, उनका छोटा सा मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे है। और ऐसे बताया जाता है कि जब पुरुषोत्तम देव आ रहे थे पहली बार भी कांची युद्ध करने के लिए, तो गणेश जी ने उनके रास्ते में रुकावटें डालने का प्रयत्न किया, विघ्न डालने की कोशिश की। अब गणेश जी का काम उल्टा है, विघ्न दूर करना है, और यहां उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव के रास्ते में विघ्न डाल दिए, इसलिए उन्होंने कपटी काम कर दिया। इसलिए भंडा जो शब्द है उड़िया में, इसका मतलब है कि जो कपटी, जिन्होंने कपट किया, इसलिए उनका नाम आज भी है भंड गणेश। तो ये भंड गणेश का मंदिर भी जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में पाया जाता है। फिर उन्होंने आके जगन्नाथ जी के पीछे उनकी स्थापना की। तो रानी पद्मावती वापस आ गई और उस समय वहां चल के कांची में घोषणा की थी राजा पुरुषोत्तम देव ने कि अभी हम इस रानी या राजकुमारी का विवाह एक चंडाल से कराएंगे। तो इस विचार से पद्मावती देवी को वो ले गए थे वापस पुरी। अब राजा पुरुषोत्तम देव की जो मंत्री थे वो बड़े बुद्धिमान थे और वो जानते थे कि रानी पद्मावती जो है वो पुरुषोत्तम देव से ही विवाह करना चाहती है, और ये तो राजा क्रोध में ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को अपने घर में ही ठहराया मंत्री ने, और बड़े सम्मान से, जैसे कि एक रानी को सम्मान दिया जाना चाहिए, वैसे ही सम्मान से अपने घर में रुकवाया। फिर अगले साल का रथ यात्रा का समय फिर से आ गया और जब राजा रथ के सामने आए और झाड़ू मारने ही वाले थे तो मंत्री आके कहने लगे, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात हमें करनी है। तो राजा ने कहा, क्या बात है? तो मंत्री ने कहा, आपको याद होगा कि आपने घोषणा की थी, आपकी इच्छा थी कि आप पद्मावती देवी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहेंगे जो सड़क में झाड़ू मारता है, चंडाल वृत्ति को जिसने अपनाया है, तो मैं ऐसे विवाह कराना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, अरे अभी ये तो रथ यात्रा चल रही है, अब मैं झाड़ू कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, अभी रथ यात्रा के बाद ये सब देखेंगे। तो फिर मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, वो व्यक्ति आप है, क्योंकि आप अभी झाड़ू मार रहे हैं ना, तो मैं ऐसे झाड़ू मारने वाले व्यक्ति से उस रानी का विवाह करना चाहते हैं। तब राजा पुरुषोत्तम देव को बड़ी प्रसन्नता हुई, ये मंत्री बहुत बुद्धिमान है, और वैसे भी राजा पुरुषोत्तम देव पद्मावती देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन क्षत्रिय एक स्वाभिमान होता है, इसके कारण नहीं बोल पाए थे। लेकिन अब जब मंत्री ने ऐसे व्यवस्था कर दी तो बड़े प्रसन्नता से राजा पुरुषोत्तम देव ने बात को स्वीकार कर ली। आगे चल के विवाह आदि हुआ और फिर वो वहीं पर रहने लगी रानी पद्मावती। तो इस तरह से राजा पुरुषोत्तम देव, ये महान भक्त जगन्नाथ थे, उनका विवाह हुआ पद्मावती देवी से। तो अंत में और एक लीला आपको बताना चाहेंगे जो हमने भक्त पुरुषोत्तम महाराज से सुनी थी। वो उड़ीसा के हैं, जगन्नाथ जी के अनेक कथाओं को वो जानते हैं। वैसे लक्ष्मी देवी, जैसे हमने बताया, वो रसोई करती हैं जगन्नाथ भगवान के लिए, और विशेष करके मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी देवी की पूजा होती है, और उड़ीसा में विशेष करके जगन्नाथपुरी में इस महीने में हर गुरुवार को जो हर घर की महिलाएं हैं वो लक्ष्मी पूजा करती हैं। प्रातः काल में उठ के उनको भोग चढ़ाना, उनके लिए अनेक सेवाएं उनकी करना। तो एक गुरुवार में इस महीने में लक्ष्मी देवी ने सोचा कि मैं चलो जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाके अनेक घरों में जाके देखती हूँ कि सब घरों में महिलाएं मेरी पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चुपचाप वो निकल पड़ी बाहर, किसी को पता नहीं चला कि लक्ष्मी देवी बाहर निकल पड़ी हैं। तो जाके वहाँ पे एक वैश्य व्यक्ति जो कि बहुत अमीर था, उसके घर में जाके देखा कि सारे महिलाएं सो रही हैं, अभी तक समय हो गया, अभी तक फिर भी सो रही हैं। अभी लक्ष्मी पूजा करने की बात नहीं, अभी तक स्नान भी नहीं किया, तो क्या पकाएंगे, क्या करेंगे? तो प्रसन्न नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ये घर में अभी दारिद्रता आएगी। तो धीरे धीरे ऐसे उस वैश्य के घर में फिर सभी गरीब हो गए, अभी उनका धन नष्ट हो गया। फिर ऐसे घूमते घूमते फिर वो चांडालों के जगह में गई, वहां देखा कि वहां ये चांडाल के घर में भी महिलाएं जो हैं जल्दी उठ के स्नान करके अब लक्ष्मी पूजा करने की तैयारियां कर रही थी। लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हो गई, फिर उनको उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया कि आपके यहाँ खूब ऐश्वर्य आ जाए। तो उनके घर में ऐश्वर्य आ गया। तो उनके घर से वो लौट रही थी, उस समय जगन्नाथ और बलभद्र प्रातः काल के सैर के लिए निकले थे, वो भी कोई देखता नहीं उनको, वो अपने सुबह के सैर के लिए निकले, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो निकले जा रहे थे, उन्होंने देखा बलराम, उन्होंने देखा अरे लक्ष्मी देवी आ रही है, चांडालों के जगह से आ रही है। तो बलराम को बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने जगन्नाथ से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी लक्ष्मी देवी हमारे मंदिर में कैसे आएंगी, चंडालों के घर में जाके वहां सब सेवा स्वीकार करके वहां भोजन आदि खा के आएंगी, फिर यहाँ कैसे हमारे मंदिर में आ सकती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो जाके बोलो कि नहीं आ सकती मंदिर में। तो जगन्नाथ जी क्या करें, एक और पत्नी है, दूसरी ओर बड़े भाई है, गृहस्थों में ऐसे होता है ना अक्सर कभी कभी, इस ओर से उस ओर से भी, तो बेचारे जगन्नाथ भगवान क्या करते, वो तो जाके बताना पड़ा क्योंकि बड़े भाई हैं, बड़े भाई की बात सुननी चाहिए। तो जाके लक्ष्मी देवी से कहा कि आप चंडाल के घर से आ रही हो, ये ठीक नहीं, अभी आप आपको आना मना है जब मंदिर में। तो लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया कि ये तो अन्याय हो गया, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो कि ये मेरा महीना है और इस महीने में विशेष करके इस दिन पर मुझे अनुमति दी जाती है बाहर जाके सब जगह जाना, जहां भी मेरी पूजा होती है मैं जाती हूं और सेवा स्वीकार करती हूं, और ये सब मेरे भक्त हैं, तो ये भी करना ठीक नहीं है। तो मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आपके मंदिर में भी सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा और आपको भोजन भी नहीं मिलेगा, और मेरे हाथ से जब तक मैं पकाऊंगी नहीं तब तक आप कुछ आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो जगन्नाथ जी डर गए, अभी क्या किया जाए। तो वापस बलभद्र के साथ चले गए, वापस जगन्नाथ मंदिर में चले गए, और वहां देखा कि लक्ष्मी देवी के जितने भी साथ में सेवा करने वाले थी, उनकी दासियां थी, वो सब चली गई और रसोई घर में कुछ बना नहीं। बलभद्र राह देख रहे कृष्ण जगन्नाथ से कह रहे क्या हुआ, भोग नहीं है, भूख लगी है, कहा है। तो पता चला कि रसोई घर में कुछ है नहीं और कोई पकाने के लिए भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो दूसरा कोई चारा नहीं रहा, बाहर जाके भिक्षा मांगना चाहिए, अब और क्या कर सकते हैं। तो दोनों ने ब्राह्मणों का रूप लिया, लेकिन लक्ष्मी जी के घर में नहीं होने के कारण और भूखे होने के कारण उनका रूप कुछ उतना तेजस्वी नहीं लग रहा था। तो सबने देखा कि अरे ये कैसे ब्राह्मण आए हैं, चलो इनको भिक्षा नहीं दे सकते। तो जगह जगह जाए को भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं, और एक जगह कोई उत्सव चल रहा था वहां जाके उन्होंने, वो एक महिला देने के लिए तैयार थी, तो वो दिया, जैसे दिया वो सब सूख गया हाथ में, कुछ रहा नहीं। ऐसे जहां भी जाए तो ऐसी समस्या होने लगी, ब्राह्मणों ने दिया नहीं भिक्षा, और दूसरी जगह जहां से भी और लिया वो सूख जाता था। फिर एक जगह वो सोचे कि चलो पानी तो पी लें, एक कुएं के पास गए, वहां पहुंचते पानी सूख गया, एक कुंड के पास गए वहां जाके भी पानी सूख गया। फिर सोखा भूखे प्यासे, अब धूप इतनी कड़ी है, लक्ष्मी देवी ने सूर्य देव को आदेश दिया कड़ी धूप लगा, तो सूर्य देव को भी आदेश का पालन करना पड़ा। कड़ी धूप में देखने लगे अब क्या किया जाए, थोड़ी छांव तो मिले। तो एक बड़ा पेड़ था, लेकिन जैसे उसके नीचे गए सारे पत्ते भी सूख गए। अब ये तो बहुत पीड़ित अवस्था में दोनों भाई इधर उधर घूम रहे हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर आके पास में देखा एक ही रास्ता है, यहाँ कोई चंडालों के समाज है, तो वहां अभी भूख लगी है, अब क्या किया जाए किधर जाए। तो वहां गए तो चंडालों के परिवार ने उनको अच्छा स्वागत किया, उनको बिठाया, अब हमको भोजन दो अभी बहुत भूख लगी है। तो अवश्य, तो बलराम ने कहा नहीं मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं चंडालों के हाथ से कैसे करूंगा स्वीकार। तो उन्होंने कहा मुझे आप स्वयं भोजन बनाने के लिए कोई व्यवस्था कर दो। तो लकड़ी लाए, फिर मिट्टी के मटके आदि लाए, चूल्हा आदि बनाया उनके लिए और सामग्री आदि लाई। तो बलराम जी स्वयं वहां बैठे, कहा कि कृष्ण को और जगन्नाथ को आप बनाओ। अब जगन्नाथ बैठे भोजन बनाने के, लेकिन आग लगे ही नहीं, कितना भी करे वो आग नहीं लगे। तो बलराम जी को क्रोध आया, अरे क्या आग भी नहीं जला सकते हो। तो खुद बैठे, लेकिन आग जले ने केवल धुआं धुआं धुआं, सारा घर धुएं से भर गया, और दोनों ये ब्राह्मण जो थे वो भी देख भी नहीं पाए, सांस भी नहीं ले पाए। आखिर फिर वहां घर की जो गृहिणी थी उन्होंने कहा हम दे देंगे। तो वहां वास्तव में लक्ष्मी जी थी। फिर लक्ष्मी देवी ने भोजन बनाया, जब दिया तब दोनों ने बड़े आनंद से भोजन स्वीकार किया, और भोजन के बाद उन्होंने एक मीठा पदार्थ दिया जो केवल जगन्नाथ मंदिर में आता बनता है, और वो केवल लक्ष्मी देवी बनाती हैं, जगन्नाथ देव और बलराम जी दोनों इस बात को मानते जानते थे। अब ये जब पदार्थ उन्होंने देखा और उसको चखा तो कहा ये तो केवल लक्ष्मी देवी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तब बलराम जी को भी पता चला कि ये लक्ष्मी देवी है स्वयं, तो हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, लक्ष्मी देवी के प्रति अपराध किया, लेकिन बड़े भाई होने के नाते कृष्ण के उनका भी, मैं तुम्हारी पत्नी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ तुम बुलाओ, मनाओ और उसको वापस ले आओ। फिर और फिर जगन्नाथ भगवान बोले, अब हर चीज में मुझे ही सामने जाना पड़ता है, अब क्या करे, बड़े भाई है, मानना पड़ेगा। तो फिर वो आए, लक्ष्मी देवी को मनाया, फिर लक्ष्मी देवी भी प्रसन्न हो गए, फिर वापस चली गई। तो वास्तव में जिस घर में लक्ष्मी देवी पहली बार गई थी, उनका नाम था श्रिया चंदुहुली, ऐसा कोई नाम था उड़िया में। तो उस चंडाल परिवार के घर में गई थी जहां ये महिला रहा करती थी। तो ये महिला भी अभी उड़ीसा में प्रसिद्ध है, काफी वर्ष हो गए इसके, अनेक वर्ष हो गए, लेकिन इसके नाम अभी तक लोग जानते हैं। और आज से लक्ष्मी देवी ने कहा कि जो आपका प्रसाद होगा, महाप्रसाद, वो सबको बांटा जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए है, वैश्यों के लिए, किसकी, चांडालों को भी देना चाहिए। और आज तक ये प्रथा जगन्नाथपुरी में है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बिना कोई भेदभाव के सबको बांटा जाता है, यहाँ तक कि जो चंडाल हैं, जो भी हैं, सबको जगन्नाथ जी का प्रसाद अवश्य मिलता है। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलभद्र देव की जय, श्री सुभद्रा महारानी की जय, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या प्रसाद है नीचे? हाँ, तो अभी आपको भूखा नहीं जाना पड़ेगा, जगन्नाथ जी का प्रसाद आपके लिए उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, जो कि स्वयं लक्ष्मी देवी ने बनाया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।